नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है मंत्र बनाम उच्चारण। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर क्या मंत्र सिर्फ वो शब्द हैं जिन्हें हम दोहराते रहते हैं या कुछ और बात है?
जी,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं नहीं, असली शक्ति तो शब्दों के पीछे जो बोल रहा है उसके जीवन में, उसकी वाणी में है। तो आज हम इसी गहरे भेद को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल।
तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव अक्सर गायत्री मंत्र का जिक्र करते हैं, उसके महत्व पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन वो साथ में एक सवाल भी उठाते हैं। क्या सिर्फ मतलब ओम भूर भुव स्वः, इन शब्दों को बस ऐसे ही मशीन की तरह दोहरा देना ही मंत्र साधना हो गई?
हाँ, यहीं पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। पूज्य गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं कि मंत्र वो आवाज है, वो ध्वनि है जिसमें इतनी शक्ति हो, मतलब इतनी कि वो ईश्वर तक पहुंचे, वहां सुनी जाए। और ये शक्ति केवल शब्दों के सही उच्चारण से या वो कितने सुरीले ढंग से बोले गए इससे नहीं आती। जो हम आमतौर पे करते हैं ना, वो ज्यादातर बस उच्चारण होता है, शब्दों का बाहरी रूप।
अच्छा, यानी सिर्फ सही तरीके से बोलना काफी नहीं है?
गुरुदेव ने इसको समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण भी दिया है ना,
वो गांव के ठाकुर रामायण का, जो जानवरों की अलग अलग आवाजें निकाल लेते थे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो म्याऊं म्याऊं भौं भौं करके लोगों को हंसाते थे, मनोरंजन करते थे। तो गुरुदेव इसी उदाहरण से समझाते हैं कि भाई जैसे ठाकुर साहब सिर्फ नकल कर रहे थे, आवाज की नकल, वैसे ही अगर हम अपने जीवन को, अपने आचरण को बिना बदले सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करते रहे तो क्या ईश्वर उससे प्रभावित हो जाएंगे?
ये तो सोचने वाली बात है कि ईश्वर शब्दों या बाहरी चीजों से, कर्मकांड से प्रभावित नहीं होते।
बिल्कुल। और यही हमें एक बड़े मुद्दे पर लाता है। पूज्य गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि लोग वस्तुओं में या क्रियाओं में शक्ति ढूंढते हैं ईश्वर को रिझाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, रुद्राक्ष की माला पहन लो, या घर में वो क्या कहते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रख लो। बड़े किस्से चलते हैं इनके।
हाँ हाँ, बहुत सुना है।
लोग सोचते हैं इनमें कोई चमत्कार है कि बस ये रख लिया तो कोई बड़ा पद मिल जाएगा या पैसे बरसने लगेंगे। लेकिन गुरुदेव साफ कहते हैं असली शक्ति इन चीजों में नहीं है। शक्ति है व्यक्ति के अपने आचरण में, उसके जीवन जीने के ढंग में, और ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा, मतलब उसका ईमान कैसा है, उसमें है। अध्यात्म कोई जादूगरी थोड़ी है कि कुछ चीजें जमा कर ली या कुछ क्रियाएं कर ली और बस मनचाहा फल मिल गया, ऐसा नहीं होता।
ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि अक्सर हम सब कहीं ना कहीं इन्हीं बाहरी चीजों में शक्ति खोजते रह जाते हैं। तो अगर शक्ति बाहरी चीजों में या सिर्फ सही सही बोलने में नहीं है, तो फिर वाणी में वो ताकत जिसे मंत्र कहा जा सके, वो आती कैसे है? पूज्य गुरुदेव ने वाणी को सरस्वती का रूप भी तो कहा है।
जी हाँ, बिल्कुल कहा है। और इसी वाणी को सरस्वती का जीता जागता रूप बनाने के लिए, अपने शब्दों में मंत्र जैसी शक्ति लाने के लिए पूज्य गुरुदेव दो मुख्य अनुशासन बताते हैं। आप कह सकते हैं ये जीव की दो साधनाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होता है।
दो साधनाएं? अच्छा, कौन सी हैं वे?
देखिए, पहली है जिह्वा का अनुशासन, जिसे रसना साधना भी कहते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे आहार से है, हम क्या खाते हैं। और यहाँ सात्विक आहार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शाकाहारी भोजन हो, मतलब वो तो है ही, पर उससे भी गहरा मतलब है हमारी कमाई कैसी है। वो भोजन, वो वस्तुएं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, वो ईमानदारी की कमाई से आई हैं या नहीं। पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि पाप की कमाई से, बेईमानी से, किसी का हक मार कर कमाए हुए पैसे से जो अन्न खाया जाता है, उससे मन और व्यक्तित्व कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी ऊंचे नहीं उठ सकते, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। ये तो सुना ही होगा आपने।
हाँ बिल्कुल।
सात्विक और शुद्ध कमाई से पाया हुआ आहार ही मन को स्थिर करता है, सात्विक बनाता है।
अच्छा, तो मतलब आहार की शुद्धि सिर्फ खाने की चीज तक नहीं, बल्कि वो आई कहाँ से, उस स्रोत तक जाती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी साधना कौन सी है?
दूसरी साधना है वाणी का अनुशासन, यानी हमारे बोलने का तरीका। इसमें सबसे पहली बात है फालतू बोलने से बचना, अनावश्यक बातचीत से दूरी, जिसे मौन की साधना भी कहते हैं। कम बोलना, जरूरत भर बोलना, और जो भी बोले वो सोच मच कर बोले, उसमें वजन हो। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि बोलने में हमारी बहुत सारी प्राण शक्ति खर्च होती है, व्यर्थ जाती है। दूसरा अहम पहलू है सत्य बोलना। लेकिन सत्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से सही हो।
नहीं,
वो सत्य प्रेम से बोला जाना चाहिए, विनम्रता से, दूसरों का मान रखते हुए, और सबसे जरूरी बिना किसी अहंकार के। कड़वे वचन, अहंकार से भरे शब्द, भले ही वो टेक्निकली सच हो, उनमें कोई शक्ति नहीं होती, वो बेअसर होते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जीवन, हमारी वाणी, ये सब अनुशासित नहीं है, हमारा खाना पीना ईमानदारी का और शुद्ध नहीं है, हमारे बोलने में मिठास, विनम्रता, सच्चाई नहीं है, तो फिर हम चाहे कितनी भी माला जप ले, कितने मंत्र पढ़ ले, या रोज सुबह शाम धूप बत्ती कर ले, उसका पूरा आध्यात्मिक फायदा हमें नहीं मिलेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ?
आपने बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। यही तो पूज्य गुरुदेव के इस पूरे उद्बोधन का सार है, निचोड़ है। वो यही कहते हैं कि अध्यात्म असल में जीवन जीने की एक कला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व को गढ़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक तरीका है। सिर्फ बाहरी क्रियाकलाप जैसे पूजा पाठ कर लिया, माला फेर ली, आरती कर ली, ये अपने आप में काफी नहीं है। जब हम अपनी जीभ को साधते हैं, और जीभ मतलब आहार और वाणी दोनों, जब इन दोनों को साधते हैं, तब हमारे वचनों में वो शक्ति आती है जिसे हम मंत्र कह सकते हैं। तभी हमारे शब्द सार्थक होते हैं, उनमें असर पैदा होता है, ईश्वर तक पहुंचने की ताकत आती है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि मंत्रों की असली शक्ति सिर्फ उनके उच्चारण या शब्दों में नहीं है, बल्कि वो शक्ति उस उच्चारण के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके अनुशासित जीवन में है, उसके शुद्ध और सात्विक आहार में है, और उसकी सच्ची, संयमित और विनम्र वाणी में छुपी है। ये बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा गहरी अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है।
बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात हम सबके लिए सोचने को एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने खाने पीने में, अपनी बातचीत में उस अनुशासन को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे अपने शब्द भी, चाहे वो हम प्रार्थना में बोलें या आम बातचीत में, वो ज्यादा सार्थक, ज्यादा शक्तिशाली बन सके? इस पर सोचना मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत जरूरी।